नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में देर रात आई प्राकृतिक आपदा में 14 लोग लापता, खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने पूरे भारत में BSNL की मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए समझौता किया और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में कल देर रात अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। नंदानगर के 4 गांव अतिवृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 14 लोग लापता और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 35 भवन भी मलबे की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि क्षेत्र से अब तक करीब 200 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग, कुंतरा लगा फाली में, कुंतरा लगा सरपाणी में और सेरा और धुरमा में, ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। DM SSP प्रातःकाली वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको, कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। NDRF, SDRF, ITBP और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से DM से, SP से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।
इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से स्थिति की जानकारी ली और प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायल लोगों के बेहतर इलाज, लापता व्यक्तियों की त्वरित खोज और राहत शिविरों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पानी और क्षतिग्रस्त सड़कों की आपूर्ति बहाल करने के आदेश भी दिए। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि NDRF, SDRF, ITBP और अन्य एजेंसियां राहत कार्य में लगी हैं। भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन टीमें पैदल मार्ग से घटनास्थलों तक पहुंच रही हैं।
नंदानगर घाट पर गांव में बादल फटा है और बादल फटने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 गांव हैं बेसिकली, एक गांव है कुंतरी लगा फाली, इसमें 8 लोग, और दूसरा है धुरमा, इसमें 2 लोग अभी लापता चल रहे हैं। कुछ पशुओं की हानि बताई गई है। राहत बचाव टीमें रात में ही घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंच गई थी, उनके द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और बाकी टीमें भी रास्ते में जा रही हैं, लेकिन नंदप्रयाग और घाट के बीच में 6 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ है। इसके कारण अन्य टीमों को पहुंचने में विलंब हो रहा है। फिलहाल लगातार जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन का कार्य किया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग ने EVM मतपत्रों को अधिक स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए मतपत्रों के डिजाइन और प्रिंटिंग के मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। अब EVM मतपत्र पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रिंट की जाएंगी और फोटो के 3/4 हिस्से पर उम्मीदवार का चेहरा होगा ताकि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक रूपता के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम और नोटा एक समान फॉन्ट में मुद्रित किए जाएंगे। इन EVM मतपत्रों का उपयोग बिहार विधानसभा चुनाव में शुरू किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अगली पीढ़ी के GST सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर से उनका सपना साकार हुआ। जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों की कमी की। आज हम बात करेंगे वस्त्र क्षेत्र की।
जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कपड़ा उद्योग पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती कर आम आदमी पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया है। नए कर ढांचे में मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर सरकार ने जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार के इस कदम से कपड़ा क्षेत्र में लागत कम होगी, जिससे मांग बढ़ने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं रेडीमेड वस्त्रों पर भी लगने वाले जीएसटी में कटौती की गई है। अब 2,500 रुपए तक के प्रति पीस कपड़े के लिए कर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में मांग को बढ़ावा मिलेगा और श्रम गहन वस्त्र इकाइयों विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने पूरे भारत में BSNL की मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए समझौता किया है। कल नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य डिजिटल खाई को पाटना, ग्रामीण परिवारों को मोबाइल सेवाओं से सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। BSNL सिम कार्डों की बिक्री के लिए देशभर में 1,65,000 से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जनसेवा और सुशासन के मंत्र का पालन करते हुए परिवर्तन और प्रगति लाने का अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने संबंध गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से कृषि को कैसे विविध क्षेत्र में बदल दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
आज के भारत में खेती अब सिर्फ अनाज तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि का विस्तार संबद्ध क्षेत्रों में भी हो रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए आय और लचीलेपन के नए स्रोत खुल रहे हैं। भारत फलों, सब्जियों और मसालों के शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है, जहां गांव में डेयरी समृद्धि का माध्यम बनकर उभर रही है। मत्स्य निर्यात $20 अरब को पार कर गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। रागिनी बिंजोला, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
और अब एक नजर मौसम पर। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 36 घंटों के दौरान राज्य के देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 22 सितंबर तक राज्य में बारिश का अनुमान जताया है। इस अवधि में लोगों से मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रा की हिदायत दी गई है। इसके अलावा खराब मौसम की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और संवेदनशील स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई। चमोली, देहरादून और राज्य के अन्य हिस्सों में कल देर रात से तड़के तक मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। राजधानी देहरादून में अब भी बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों को खोलने के प्रयास जारी हैं, जबकि पूरी तरह क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चमोली जिले के नंदनगर क्षेत्र में देर रात आई प्राकृतिक आपदा में 14 लोग लापता। खोज और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने पूरे भारत में BSNL की मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए समझौता किया और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दौरान देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।